मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 16 जून 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें 2 दोस्त हैं भोजपुर बिहार से जिनके नाम है धीरज कुमार और मुकेश कुमार, और तीसरे साथी हैं अर्जुन सिंह जो नोएडा से हैं। तो धीरज, मुकेश और अर्जुन, आप तीनों दोस्तों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल के आप मोटिवेशन वाले पोर्शन को थोड़ा याद करें, क्योंकि आज का जो मेरा मोटिवेशन वाला पोर्शन है वो कल के बिल्कुल विरोध में है। आप बहुत विचित्र सी बात आपको लगेगी कि कल मैंने कोई बात कही और आज मैं उसके विरोध में क्यों कहने जा रहा हूं। हालांकि मुझे सीधे सीधे विरोध शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूं कि मुझे इसे अधिक यथार्थवादी कहना चाहिए कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन क्या होती है। देखिए मित्रों, जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसके एक ही सिक्के के दो पहलू साफ साफ होते हैं। पहला है उसका आदर्शवादी स्वरूप और दूसरा होता है उसका यथार्थवादी स्वरूप। कल मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी और खासकर यूएसए में मैंने जिस तरह से डेली ऑडियो गाइडेंस की कंटिन्यूटी को निभाया और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस के बावजूद किस तरीके से उस काम को अंजाम दिया गया, उन सबको बताते हुए मैंने अपना निष्कर्ष दिया था कि यदि आप चाहते हैं तो आप समय निकाल सकते हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है, कोई बहुत जादूगरी की बात यहां नहीं है। मित्रों मैंने ये यूएसए में किया, लेकिन जो मेरे पुराने श्रोता हैं वो मेरी इस बात को सुनने के बाद एक प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, और वो प्रश्न ये होगा कि सर जब आपकी भोपाल में 15 दिन की क्लासेस चलती रहती हैं उस समय आप इस डेली आरडीओ को क्यों बंद कर देते हैं? यदि कोई कुछ भी कर सकता है तो फिर आप भी तो उन 15 दिनों में आरडीओ गाइडेंस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? और यदि मेरे श्रोता, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये प्रश्न करते हैं, खासकर मेरे कल वाले मोटिवेशन को सुनने के बाद, तो मैं समझता हूं कि उनका प्रश्न बहुत जायज है और मुझे उनका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से देना भी चाहिए। तो सच पूछे मित्रों, तो मुझसे किसी ने ये प्रश्न तो अभी तक नहीं किया है। हो सकता है कि जब मेल आए तब कुछ ऐसे प्रश्न हों, मैं उन्हें देखूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो प्रश्न पूछे मैं खुद में उत्तर दे रहा हूं। कल मैंने जो बात की थी वो एक सिक्के का एक आदर्शवादी पहलू था। कोई कुछ भी कर सकता है, नो डाउट, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है कि हर कोई हर कुछ कर सकता हो। ये तो होता है कि हर कोई कुछ ना कुछ तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई सब कुछ कर सकता हो। उसमें थोड़ा फर्क होता है। जब हम एक रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, एक वास्तविक संसार में जब प्रवेश करते हैं, तब जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। अब मैं अपने 15 दिन की क्लासेस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट की जो रियलिटी है वो सही तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मोटिवेशन वाले पार्ट में मैं आपको उकसाऊं। उकसाने में मेरा भरोसा नहीं है, थोथे उपदेश देने में भी मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं है, और न ही मैं बहुत ज्यादा आदर्श की बातें कर करके सामने वाले को उत्तेजित करना पसंद करता हूं। मैं एक बहुत ही रियलिस्टिक व्यू अपने लिए भी एडॉप्ट करता हूं और दूसरों को भी लगभग उसी के आसपास रहने की सलाह देता हूं। मित्रों सच पूछिए तो जो 15 दिन की क्लासेस लगती हैं यहां भोपाल में, जो अभी अक्टूबर में लगेंगी, जिसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए भी हैं, उस दौरान डेफिनेटली मेरा ऑडियो गाइडेंस बिल्कुल बंद होता है और मैं उसकी घोषणा करता हूं, और अभी भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि मैं चाहूं तो उसको कंटिन्यू कर सकता हूं, उसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो इसे तो बड़े आराम से देखा और समझा जा सकता है कि सुबह 10 बजे मेरी क्लास शुरू होती है और 6 बजे खत्म होती है, जो अप्रूव्ड टाइम टेबल है, लेकिन कभी भी वो 6 बजे खत्म नहीं होती, 6:30, 6:45, 7:00 बज जाते हैं। क्योंकि क्लास खत्म होती है तो 15 मिनट आधे घंटे तक क्लास जो लास्ट होती है वो लंबी खिंच जाती है। इसके बाद जब क्लास छूटती है तो बट नेचुरल के आधे घंटे तक उसमें से स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूं और सीधे सीधे उनसे बातचीत करूं, क्योंकि जो क्लासेस के जो बीच में गैप भी होते हैं 15 मिनट के और आधे घंटे के, उसमें भी मैं अपने स्टूडेंट से मिलना पसंद करता हूं ताकि व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलें, मुझसे अपनी समस्याएं डिस्कस करें, बातचीत करें, उनके भी मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो सके। तो अब बड़े आराम से मैं चाहूं तो 10 बजे क्लास शुरू करूं, 6 बजे क्लास बिल्कुल खत्म कर दूं, और 6 बजे क्लास खत्म करते ही मैं अपने घर वापस आ जाऊं। फिर मैं बड़े आराम से 1.5-2 घंटे तक तैयारी करके, अखबार पढ़ करके और न्यूज़ सुन करके और रिकॉर्डिंग कर सकता हूं, और इस तरह से 8:30 बजे तक मैं फ्री हो सकता हूं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे की तैयारी हो सकती है। सुबह का भी समय थोड़ा सा बचेगा तो हो सकता है कि अखबार पढ़ने का काम मैं सुबह कर लूं तो शाम का काम उधर थोड़ा सा मेरा कम हो जाए। मतलब कहने का अर्थ ये कि मैं कर सकता हूं। फिर आप कहेंगे कि सर जब आप कर सकते हैं तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं, उसमें क्या परेशानी है? तो मित्रों मैं अब आपको वही बात बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहूंगा। निश्चित रूप से अगर पूछे मुझसे कि सर आप बताएं कि क्या आप डेली ऑडियो गाइडेंस को अपने क्लासेस के दौरान भी करना चाहेंगे, तो मेरा उत्तर होगा कि हां मैं करना चाहूंगा, लेकिन उसके आगे लिखा होगा लेकिन। लेकिन इसका मतलब है कि मैं अपने क्लासेस की गुणवत्ता जो क्वालिटी है उसकी कीमत पर उन 15 दिनों के दौरान कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। ये मेरा लेकिन के आगे का वाक्य है। मित्रों देखिए एक कैपेसिटी होती है, हमारी कैपेसिटी कई भागों में बटी होती है। नो डाउट कि जो 10 बजे से 6 बजे तक की जो कैपेसिटी है ये बेस्ट कैपेसिटी का पीरियड होता है। अब आप कल्पना करके देखिए कि 6 घंटे 7 घंटे या 7.5-8 घंटे तक लगातार क्लासेस में अलर्टनेस के साथ लेक्चर देने के बाद, स्टूडेंट्स के प्रश्नों के जवाब देने के बाद, क्योंकि हम यहां की क्लासेस में हमेशा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होता है, ये नहीं है कि आप सुने और चले जाएं, उन प्रश्न आपको सुनने हैं ध्यान से, फिर उनके जवाब देने हैं, और जवाब के भी से फिर प्रश्न बनेंगे उनके जवाब देने हैं, और लगातार संवाद की स्थिति बनी रहती है। तो सच पूछे तो इन 7.5-8 घंटों में फिजिकली मेंटली कोई भी व्यक्ति एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट? अब अगर इसके बाद मैं ऑडियो गाइडेंस पर आता हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस ऑडियो गाइडेंस की क्वालिटी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। दूसरी चीज कि जो मेरी नेक्स्ट डे की क्लास की प्रिपरेशन है उसमें बाधा आएगी, क्योंकि मैं डेली जितने भी 4 लेक्चर अगर मुझे देने हैं 1.5-1.5 घंटे की, तो उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे रोज चाहिए, तो फिर मैं उस प्रिपरेशन में लग जाऊं। इसके बाद फिर मेरे मुझे स्लीप खाने के भोजन का समय चाहिए, फिर भोजन करने के बाद थोड़ा सा टहलने का समय चाहिए, फिर स्लीपिंग टाइम चाहिए, और फिर सुबह उठ करके फिर से वो सारा का सारा सिलसिला शुरू होगा। मित्रों 1-2-3 दिन हो तो इसे भी किया जा सकता है, सच पूछिए तो क्लास की क्वालिटी को भी संभाला जा सकता है और ऑडियो गाइडेंस की भी क्वालिटी को संभाला जा सकता है। लेकिन यह सवाल है 15 दिनों का। 15 दिनों तक मुझे लगता है, मैं अगर अपनी स्थिति की बात करूं, अपनी फिजिकल एनर्जी की बात करूं, मेंटल एनर्जी की बात करूं, तो शायद मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद उसमें धीरे 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 गिरावट आनी शुरू होगी, और 7-8 दिन के बाद काफी गिरावट आ चुकी होगी। और मित्रों जो स्टूडेंट 15 दिन के लिए मेरे पास आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, विश्वास के साथ आ रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह की थोड़ी सी भी 0.01% की भी चूक करने की गवाही मेरी आत्मा मुझे नहीं देती। वो नहीं कहती कि मैं उनके साथ जरा सा भी कोई समझौता करूं। हो सकता है कि मैं जितना कुछ कर रहा हूं उनको लगे कि नहीं इससे और अच्छा किया जाना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन मैं कम से कम जितना कर सकता हूं मैं तो अपना 100% वहां दूं। तो मैं मेरी जो अब अगर मैं इसमें कहूं कि मैं करना चाहता हूं लेकिन क्यों नहीं करूंगा, तो पहली बात तो यह कि मेरी अभी 15 दिनों के लिए जो ऑडियो गाइडेंस होगी वो प्रायोरिटी नहीं होगी। दूसरे मित्रों, अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए दूसरी क्या क्या समस्या आएंगी, किस तरह से मेरी क्लास की जो क्वालिटी है वो घटेगी। नंबर एक कि मेरा दिमाग डाइवर्ट होगा, 4:30-5 बजे शाम के बाद ही मुझे लगने लगेगा कि अरे यार 6 बजे क्लास खत्म करो क्योंकि अभी तो ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली भंग हो जाएगा। फिर मैं जो 500 स्टूडेंट यहां आकर के क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिनको मैं हमेशा ये कहता हूं कि अभी आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको अपना पूरा 100% पूरी एनर्जी, चाहे फिजिकल एनर्जी हो, मेंटल एनर्जी हो, इमोशनल एनर्जी हो, अगर आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो आपको सिर्फ क्लास में लगाना है, आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में मैं उनसे नहीं कह सकूंगा कि आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि वो खुद सोचेंगे कि अगर सर क्लास लेते हुए भी डेली ऑडियो गाइडेंस कर रहे हैं तो जब सर कर रहे हैं तो हमें भी सुनना चाहिए, और सुनने के कारण उनमें फिर डाइवर्शन होगा, और मैं नहीं चाहता कि उस दौरान स्टूडेंट जरा भी किसी चीज में डाइवर्ट हो। और यदि मैं कहूं कि नहीं ऑडियो गाइडेंस जाएगा और आप सुनिए मत, तो डेफिनेटली मैं फिर उनके साथ कोई ना कोई गड़बड़ी कर रहा हूं, उनके साथ ईमानदारी नहीं बरत रहा हूं। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, फिर उनसे कह रहा हूं कि नहीं आप लोग मत सुनिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो विरोधाभास वाली बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में मेरे हो सकता है कि मना करने के बावजूद भी उनको लगे कि नहीं यार ऑडियो गाइडेंस सुनो, और इसके बाद उनका डाइवर्शन हो जाएगा। और यदि मैं इन्हें मना कर देता हूं तो 15 दिनों का ऑडियो जो मेरे 500 स्टूडेंट यहां होंगे वो मिस कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सच पूछिए तो ये मेरे द्वारा ही लिया गया निर्णय है कि बावजूद इसके कि मैं ऑडियो उन 15 दिनों में भी कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। मैं फिर से दोहरा दूं कि क्यों ऐसा है, उसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उन 15 दिनों में ऑडियो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। उसमें जो मेरी एकमात्र जो प्रायोरिटी होती है वो होती है वे स्टूडेंट जो एकेडमी पर भरोसा करके, जो मुझ पर भरोसा करके, पता नहीं कहां कहां से हिंदुस्तान के किन किन कोनों से अपना इतना लंबा सफर तय करके, कोई नौकरी छोड़कर, कोई कॉलेज छोड़कर, एक विश्वास लेकर भोपाल एकेडमी आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, समय लगाते हैं, 15 दिन का अपना वक्त देते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपना 100% उनको देना चाहिए, और इसका परिणाम होता है कि जब उनको लगता है कि हाँ सर अपना 100% दे रहे हैं, तो वो यहां से लर्न करके जाते हैं, इन चीजों को देख कर जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, फिर वो आगे चलकर ये बात उनके व्यक्तित्व में शामिल होती है और फिर वे अपना 100% देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मित्रों, मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बजाय 15 दिन के उस ऑडियो गाइडेंस के, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो स्टूडेंट इतने लंबे समय से ऑडियो सुन रहे हैं उनमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाती है, इतनी कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो आगे के ऑडियो न्यूज को खुद थोड़ा सा एनालाइज कर ले, और फिर उस दौरान जो अखबारों की क्लिपिंग्स होती हैं वो मैं प्रोवाइड करता ही हूं। हाँ, ये बात अलग है कि वो अंडरलाइंड नहीं होते, रेखांकित नहीं होते, लेकिन अखबारों की क्लिपिंग्स उनको मिलती रहती है। तो अखबारों की क्लिपिंग्स का विकल्प आप लोगों के पास नहीं हो सकता, क्योंकि 7-8 अखबार लेना सच ये है कि हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती, बहुत जगह पर अखबार मिलते भी नहीं है, और अगर मिल भी जाते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्या पढ़ा जाए, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको मैं मिस नहीं होने देता, वो मैं करता हूं। तो मित्रों, मुझे लगा कि कल मैंने आपसे जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक बात की है उसे थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मुझे आज और कंटिन्यू करके उस टॉपिक को समाप्त करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सफाई दी, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आए, और अगर आती है तो बिल्कुल सही आती है, आनी ही चाहिए। तो मित्रों, अंत में जो कल मैंने बात कही थी उसे अब मैं इस नोट के साथ खत्म करूंगा कि देखिए चीजों को यथार्थवादी तरीके से देखिए, लाइफ में अपनी प्रायोरिटी फिक्स कीजिए, और सिविल सर्विस अगर आपकी प्रायोरिटी है तब निश्चित है कि आप उसके लिए किसी भी हालत में समय निकाल लेंगे। मित्रों, जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है या हम जब किसी चीज को चुनौती के तौर पर लेने लगते हैं, तो मान करके चलिए कि यह प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमारी जो अपनी कैपेसिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो आज के इस मोटिवेशन वाले पार्ट में इतना ही दोस्तों। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो AIR न्यूज का स्टेज है। कल के AIR न्यूज में आपने देखा है दोस्तों कि बहुत सी जो खबरें थी वो एक तरह से परसों की जो खबरें थी उन्हीं का एक्सटेंशन था, जिसमें खासकर ललित मोदी के बारे में जो सुषमा स्वराज जी ने ब्रिटेन से रिकमेंड किया उसको लेकर के एक बहस चल रही है। फिर एक उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या के मामले में एक मंत्री को दोषी बताए जाने के मामले को लेकर के बहस चल रही है। तो इस तरह की कुछ खबरें थी जो कल की खबरें थी जो परसों का एक्सटेंशन था, तो इसीलिए उन पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उसी में एक एक्सटेंशन जो एक्सटेंडेड खबर थी वो आपने फिर से देखा कि वो रिपीट हुई है, वो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये चार देश हैं और चार देश सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं और इनके बीच में मोटर वाहन समझौता हुआ है। भूटान की राजधानी थिम्पू में समझौता हुआ है, मोटर वाहन समझौता, और मैंने इसके बारे में कल आप लोगों से चर्चा की थी कि इस समझौता होने के बाद अब इन चारों देशों के आपसी जो गाड़ियां होंगी या यात्री वाहन हो या भाड़ा वाहन हो, ये बड़े फ्री तरीके से आ जा सकेंगे और डेफिनेटली इससे इनके बीच में व्यापार बढ़ेगा, इनके संबंध और घनिष्ठ होंगे। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं और मैं समझता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आज फिर से रिपीट करूंगा कि जो खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट ये है। मित्रों, एक दो खबरें थी, आज हमारे पास न्यूज की खबरें बहुत ज्यादा नहीं है। ललित मोदी वाला मामला आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। सिविल सर्विस की दृष्टि से अभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण मालूम नहीं पड़ रहा है, अब देखते हैं कि ये क्या रूप लेता है। लेकिन फिलहाल इस न्यूज आइटम का जो शेड है या जो कलर है उसे आप ये मान करके चलें कि जो ललित मोदी हैं जब IPL के कमिश्नर थे उस समय उन पर आरोप वगैरह लगे, कुछ जांच वगैरह हुई तो उन्हें खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिप्त पाया गया और फिर ये भी कहा गया कि उनके पास बहुत काला धन है, IPL से उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बाद में फिर वो फरार होकर के लंदन में रह रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष जो दल हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो देश से फरार हुआ है, जो काला धन लेकर के फरार हुआ है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया है, उसको मानवता के आधार पर ही चाहे क्यों ना हो इस तरीके से रिकमेंड करना कि उन्हें पुर्तगाल जाने की अनुमति दी जाए, ये कहीं ना कहीं सरकार के और ललित मोदी के कुछ आपसी गठबंधन को शो करता है। मतलब ये क्या सच में किसी अपराधी को इस तरह के मानवता के आधार पर आदेश दिया जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है? और एक पार्टी ने तो ये भी सीधे सीधे पूछा है कि सरकार का ये केवल ललित मोदी के मामले में है या फिर सभी अपराधियों के साथ वो ऐसा करे, ऐसी इस तरह की कोई किसी नीति पर विचार कर रही है कि यदि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन जहां इस तरह के मानवता वाले प्रसंग आते हैं तो उनकी मदद की जानी चाहिए। तो खासकर चूंकि अभी जो सरकार आई है उसमें आप देखते हैं कि जो काला धन का जो मामला है वो बहुत मायने रखता है, वो चुनावी अभियान के दौरान भी ये बहुत अहम मुद्दा था और सरकार के गठन होते ही जो कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई उसमें काले धन के मुद्दे पर ही गठन किया गया, सेट का गठन किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार काले धन के मुद्दे पर सत्ता में आई और पहले ही अपनी कैबिनेट की बैठक में जिसने काले धन के विरोध में निर्णय लिया, वही अब काले धन से संबंधित एक अपराधी की इस तरह से मानवीयता के आधार पर मदद कर रही है, तर्क दे रही है, तो थोड़ा सा वो बड़ा एक विरोधाभासी जैसी सिचुएशन दिखाई देती है। तो मैंने केवल थोड़ी सी चर्चा आपसे की है इसकी पृष्ठभूमि को लेकर के कि अभी ये न्यूज केवल काले धन के मामले में एक कंटेंट के रूप में हमारे सामने आ रहा है और वो भी कोई ऐसा बहुत ही प्रोमिनेंट कंटेंट नहीं है जिसका इस्तेमाल हम अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि सीधे सीधे कर सकेंगे, लेकिन आगे देखिए कि ये क्या रूप लेता है, फिर इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक जो खबर जो थी मित्रों, हालांकि वो खबर तो बहुत ही सामान्य किस्म की थी कि जो जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसकी प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है, इस बात को लेकर के थी और उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप 2013 और 2014 के जो जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, चाहे आप प्री के उठा करके देखें या मेंस के उठा करके देखें, आप पाएंगे कि सरकार की खासकर जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो योजनाएं हैं फिर चाहे वो आर्थिक विकास के माध्यम से ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात क्यों ना हो, उस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वाभाविक भी, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना ही है। तो अभी वो न्यूज में थी, अगर न्यूज में नहीं होती तो भी आपको चाहिए ही कि सरकार ने खासकर इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में एक अच्छी जानकारी आपके पास हो। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अच्छी जानकारी की मैं बात कह रहा हूं उसमें तथ्यात्मक जानकारी तो होनी ही चाहिए, यानी कि कंटेंट होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक योजना है और वन्य भूमि योजना है, मान लीजिए तो उस वन्य भूमि योजना के साइलेंट फीचर क्या है। साइलेंट फीचर आपको मालूम होने के बाद, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं मालूम होने के बाद, फिर आप में अब ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसके एनालिसिस कर सकें। आप उसके एनालिसिस कैसे करेंगे, वो ये आप डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं समझता हूं कि अगर सुन रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्षमता आपके अंदर आ भी रही होगी, और बट नेचुरली कि आपकी जो एनालिसिस होगी वो किस एंगल से होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जनजातियों के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये मैं समझता हूं कि सरकार की जो अपनी वेबसाइट होती हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उसमें बड़े आराम से मिल भी जाते हैं। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यदि आपको उसके विशेषताएं मालूम हैं और हमारा पूरा का पूरा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जो कल्चरल स्ट्रक्चर है, खासकर उनकी जो आवश्यकताएं हैं, अगर वो मालूम है तो बड़े आराम से आप उनका विश्लेषण कर लेंगे। मित्रों, एक जो दुर्भाग्यजनक खबर है कह लीजिए, जो सच में दिन पर दिन इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, वो न्यूज़ आपने सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्री मेडिकल टेस्ट था लिया गया था, जिसमें लगभग 6 लाख स्टूडेंट बैठे थे, उस परीक्षा को उन्होंने रद्द कर दिया है और कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर यानी 1 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराई जाए। और उसके पीछे कारण ये था कि बहुत से ऐसे केसेस मिले हैं कि स्टूडेंट्स को प्रश्नों के उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किए गए हैं। मित्रों, सच पूछे तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में आती जा रही हैं। बहुत से राज्यों की जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हैं वो इस तरह के घेरे में आ रही हैं, कहीं और दूसरी जो परीक्षाएं हैं वो घेरे में आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसके द्वारा जो ली गई परीक्षाएं हैं जिसमें मेडिकल भी है, वो भी इसी तरह के संदिग्ध के घेरे में है, जिस पर केस भी चल रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपको इस बात का संतोष होना चाहिए कम से कम कि जिस सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं, वो अभी तक कम से कम इस तरह के संदेह के घेरे से बिल्कुल परे है। ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक आत्मसंतोष की बात है और बहुत ही विश्वास, या कह लीजिए कि एक बहुत ही सुकून देने वाला मामला है। जहां भी सिविल सर्विस या यूपीएससी को, खासकर सिविल सर्विस परीक्षा के मामले को लेकर जरा सी भी कोई संदिग्ध की भनक सी भी लगती है, वो तुरंत इतने हार्ड और इतने तात्कालिक स्टेप उठाती है कि वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी बात है मित्रों, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो सिविल सर्विस परीक्षा है अपने आप में कितनी अहमियत रखती है। तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों से सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि ठीक है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट न हो, क्योंकि सिविल सर्विस की परीक्षा जो जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं वो अभी तक कम से कम अपनी पवित्रता को अब बनाए हुए है। तो मित्रों, अखबारों के अब मैं आता हूं अखबारों पर, या यार न्यूज के बारे में बस इतना ही, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं थी। दोस्तों, अखबारों में एक आर्टिकल आया है दैनिक भास्कर का, जो गुरुचरण दास जी का जो आर्टिकल है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी गुरुचरण दास जी का आपको आर्टिकल पढ़ने को मिले आप लोग बिल्कुल पढ़िए, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वो अपना एक अलग नजरिया रखते हैं, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं, तो उनके एक व्यावहारिक दृष्टिकोण उनके पास है। वो इतिहास के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने महाभारत पर किताबें लिखी हैं, मैंने उनको सुना भी है। तो वो भारतीय जो इतिहास के संदर्भ हैं, जो संस्कृति के संदर्भ हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये जो आर्टिकल है उन्होंने खासकर अभी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है उसको लेकर के लिखा है, और इस बात को इंडिकेट किया है कि ये एक तरह से इस पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में जो साझा व्यापार करने की जो एक आदत बन रही है कि आपस में मिलकर हम व्यापार करें, उसको बहुत आगे बढ़ाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया है मित्रों की, अभी तक भारत के जो स्टीमर होते थे, जो जहाज होते थे, मालवाहक जो जहाज होते थे, वो सिंगापुर होते हुए जाते थे, तो उन्हें बांग्लादेश पहुंचने में 3 सप्ताह लगते थे, और अब ये समझौता हो जाने के बाद अब उन्हें बांग्लादेश पहुंचने में केवल 1 सप्ताह लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा उसकी जो भाड़े की जो कीमत होगी, जो कास्ट होगी, वो कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि अब इस समझौते के बाद होगा ये कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो बांग्लादेश को बिजली बेच सकेंगी, और डेफिनेटली इसमें जो बांग्लादेश के जो SEZ एरिया हैं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होंगे, वहां इंडस्ट्री भी लगा सकेंगी, और डेफिनेटली इससे भारतीयों को भी रोजगार मिलेगा। मित्रों, इतना कहने के बाद आप पूरे के पूरे इस आर्टिकल में देखेंगे कि गुरुचरण दास जी ने भारत के उस इतिहास का उल्लेख किया है जब भारत एक बार पूरे मतलब एक समय में पूरी दुनिया में जो व्यापार हुआ करता था उसका सिरमौर था, और वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 1/4 केवल भारत किया करता था। तो आपको वो ऐतिहासिक झलक देखने को मिलेगी। मैं यहां एक चीज आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा मित्रों कि गुरुचरण दास जी के लेख में आपको पूंजीवादी पक्षधर की आपको स्पष्ट रूप से झलक मिलेगी। गुरुचरण दास जी एक तरह से कह लीजिए कि खुले व्यापार नीति के बहुत बड़े समर्थक हैं, जिसे आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो पूंजीवादी व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक हैं। ठीक है, उनके अपने विचार हैं, आपके भी अपने विचार होंगे, हर एक के अपने विचार होते हैं। तो यहां आपको ध्यान थोड़ा सा ये जरूर रखना होगा कि गुरुचरण दास जी के विचारों से आप कंटेंट लें और फिर उसमें अपने विचारों को शामिल करके और सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। तो मित्रों, ये जो दैनिक भास्कर का है ये आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल कमेंट है फ्रेंड्स, और वो एडिटोरियल कमेंट्स कल के एक अखबार का कमेंट मैंने डाला था जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का था, जिसमें खासकर रेलवे में क्या सुधार किए जाने चाहिए, विवेक देवराय कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये मामला धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। और सच पूछिए तो भारत को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है तो उसमें ट्रांसपोर्ट और एनर्जी दो सबसे इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में तो हम काफी कुछ कर चुके हैं, हमें अपने ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना होगा और एनर्जी सेक्टर को ठीक करना होगा, और रेलवे जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। कल आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है कि किस देखा है उसमें एक डाटा कि किस तरह से जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, आजादी के बाद सिर्फ 20% बढ़े हैं, जबकि जो यात्रियों का जो आवागमन है, जो भाड़े का जो डिमांड है, वो 8 times बढ़ा है। तो डिमांड 8 times बढ़ा, 8 गुना बढ़ा, जबकि जो ट्रैक वगैरह में जो इजाफा हुआ है केवल 20%। तो इसी से समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा मिसमैच हो रहा है। तो विवेक देवराय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, हम लोग इससे पहले भी काफी बात कर चुके हैं, इसमें भी उनको रिपीट किया गया है, तो इन्होंने भी यही बात कही है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को अब जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का है, और वो है खासकर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अभी जो मैगिन का जो मामला चल रहा है, नेस्ले कंपनी का मैगी नूडल्स का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने लिखा है, और एक नियामक संस्था जो हमारी बनी है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, 2011 में इसे बनाया गया था, और इनकी अब इसकी अब तक की जो कार्यप्रणाली रही है और इसको कैसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है उसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। हिंदी में है, आप लोग बड़े आराम से पढ़ लेंगे, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाता। इसमें एक बात दो बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात तो ये है कि अब पूरे देश में केवल 82 ऐसी एजेंसियां जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करती हैं, जिसे वो कह रहे हैं कि बहुत कम है, तो ये जो ढांचा है इसको मजबूत बनाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस प्राधिकरण में ज्यादातर जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी टाइम पार्ट टाइम ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब होते जैसे मान लीजिए कि किसी मिनिस्ट्री में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लेकिन यहां भी वो सदस्य हैं। तो इस रूप में उन्होंने उनका कहना है कि पूरे के पूरे इस प्राधिकरण पर एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है, हालांकि इसमें दूसरे भी मेंबर्स होते हैं लेकिन चलती पूरी की पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स को ही है। यहां तक इसके जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो भी समझिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण में जो जान होनी चाहिए, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती है। तो इन्होंने खासकर ये जो प्राधिकरण है इसकी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में अच्छी सलाह दी है। और आपको जब भी इस तरह के ओपिनियंस मिले, सलाह मिले, क्या किया जाना चाहिए इस तरह की कोई बात मिले, तो आपको उन्हें नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर चीज के बारे में हम अपने ओपिनियन फ्रेम नहीं कर सकते और ऐसा होता भी नहीं। हम पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में चीजें रह जाती हैं और यदि हम उनसे सहमत होते हैं तो उसे ही हम अपने ओपिनियन के रूप में वहां एक्सप्रेस परीक्षा हॉल में कराते हैं और यही जनरली होता है। तो आप चाहें तो इस आर्टिकल को, चाहें तो क्या मतलब, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मैगी नूडल्स का मामला इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं और प्राधिकरण से संबंधित प्रश्न वो हो सकता है। मित्रों, दैनिक जागरण के दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल खासकर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके इंटरनल डेमोक्रेसी पर है, ये पढ़ लीजिएगा, हिंदी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी भले ही वो डेमोक्रेटिक सेटअप में काम कर रहे हैं लेकिन उनके अपने यहां कोई लोकतंत्र नहीं है, जबकि पुर्तगाल और जर्मनी का इन्होंने उदाहरण दिया है कि किस तरह से वहां की पॉलिटिकल पार्टी को भी वहां के संविधान के तहत काम करना पड़ता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रोल करने वाली संस्था है वो हमारा चुनाव आयोग है, और वो भी दंतविहीन चुनाव आयोग है, और सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी पर कोई प्रतिबंध उस तरीके से नहीं लगा सकती। तो ऐसे में उन्होंने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरह से परिवार की संपत्ति जैसी बन गई है। दूसरा जो आर्टिकल है वो बहुत ही सामान्य किस्म का आर्टिकल है दोस्तों, मैगी के मामले को लेकर के है। मैं वैसे ही इसे डाल रहा हूं, अगर आप चाहेंगे तो देख लेंगे, लेकिन बहुत एक जनरल रीडिंग के लिए ये आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इसे देख लेंगे। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। मित्रों, बहुत से ईमेल मिले हैं और मैंने पिछले भी ईमेल शामिल किए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में भी, जब हम लोग यहां नहीं थे, अमेरिका में थे, तब भी आप सब ईमेल लिखते रहे, मैंने उन सबको पढ़ा है। स्वाभाविक है कि उन सबके नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन कुछ के नाम मैं ले रहा हूं। तो उनके भी जिनके मैं नाम ले रहा हूं और उनको भी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और यह अपेक्षा भी कि आप लोग लगातार अपने ईमेल के जरिए मुझे ऑडियो गाइडेंस की गुणवत्ता, उसकी जरूरत, इसके बारे में परिचित कराते रहेंगे। तो मित्रों, कुछ दोस्तों के नाम हैं, बिमला शर्मा, उत्कर्ष दीप, सोनिया, मणिकांत झा, मयंक कुमार मलैया, निधि रायकवार, अंबिकेश, आशीष कुमार, सौरभ उपाध्याय, मीरा, तनुप्रिया सिंह, नवीन दुबे, हरिकृष्ण गुप्ता, राहुल खान, नवीन ज्योत कौर, स्मिता, युक्ति सहाय, गणेश कौशल, कृपेश कुमार, गौरव धीमान, शिल्पा गुलेरिया, हरि ओम, अभिजीत पाटिल, पल्लवी सिंह, राधा और संदीप चीना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो गाइडेंस को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।